पृष्ठ संख्या 211, ख्वाजा हसन निजामी 1878 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी थे। वह बचपन ही से सूफियाना, धार्मिक और साहित्यिक विषयों पर लिख रहे और मृत्यु के समय तक छोटी बड़ी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके थे, जिनमें हर प्रकार के लेख मिलते हैं। उन्होंने अपनी आप बीती में बड़े विस्तार से अपने जीवन के अनेक रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। उनकी पुस्तकों में मुहर्रम नामा, कृष्ण बीती, सिपाही दिल और 12 भागों में उपन्यास के ढंग पर गजल के अफसाने बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा बड़ी सरल, सरस और बोलचाल के ढंग की होती है। छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी बड़ी बातें कहना उन्हें खूब आता है। हिंदी शब्दों का प्रयोग बड़े उचित ढंग से करते थे। उन्होंने हिंदी में कुरान शरीफ का अनुवाद भी किया, जिसे महात्मा गांधी ने भी बहुत पसंद किया था। उन्होंने बहुत से पत्र पत्रिकाएं निकाली, जिनमें अधिकतर उन्हीं के लेख होते थे। मुसलमानों के एक समुदाय में उनका बड़ा आदर किया जाता है, क्योंकि वह निजामुद्दीन औलिया के वंश में गिने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उपन्यास के अतिरिक्त छोटी कहानियाँ भी लिखी जाने लगी थीं। सर अब्दुल कादिर ने लाहौर से मखजन नामक एक पत्रिका निकाली थी, जिनमें कभी कभी विदेशी कहानियों के अनुवाद भी प्रकाशित होते थे। कानपुर से जमाना निकला था, उसमें भी कहानियाँ छपती थीं। यह बताना असंभव है कि पहली कहानी कब लिखी गई, परंतु उन्हीं के कथनानुसार इतना कहा जा सकता है कि 1906 ईस्वी के लगभग प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखा। प्रेमचंद का उल्लेख आगे के अध्याय में किया जाएगा। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि उस समय कहानियाँ लिखी जाने लगी थी, और विशेषकर यह तो अनुवाद होते थे या प्रेम और रोमांस से भरी हुई कोई कथा। लेखकों का कोई सामाजिक दृष्टिकोण न था, वह केवल दिलचस्पी पर ध्यान देते थे। ऐसे लिखने वालों में सज्जाद हैदर, यल्द्रम, नियाज फतेहपुरी और सुल्तान हैदर जोश के नाम लिए जा सकते हैं। यल्द्रम ने तुर्की भाषा से कई उपन्यासों, नाटकों और कहानियों का अनुवाद करके उर्दू के पढ़ने वालों को एक नए रंग से परिचित किया। उनकी रचनाओं में जोहरा, सालिस बिल खैर, जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह, ख्यालिस्तान और हिकायातो अहते शाह साथ प्रसिद्ध हैं। उनका गद्य अति रंगीन और भावपूर्ण होता है। वह सामाजिक विषयों के बदले मनोभावों को प्रस्तुत करने पर जोर देते हैं। उनकी रचनाओं में हास्यरस की साधारण सी लहर भी दौड़ी हुई होती है, इसलिए वह पढ़ने वाले को बहुत प्रभावित करते हैं। एक प्रकार से यह उर्दू साहित्य का रोमानी युग था, जिसमें लेखक नवीन दिशाओं में बढ़ रहे थे, लेकिन उनके सामने कोई बड़ा आदर्श नहीं था। उनके विचारों में भी नवीनता होती थी और शैली में भी। यही युग बदलकर राजनीतिक चेतना का युग बन गया, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। पृष्ठ संख्या 212। नियाज फतेहपुरी 1885 ईस्वी से 1966 ईस्वी आरंभ में इसी रंग के लेखकों में थे, परंतु बाद में समस्याओं के जटिल हो जाने के कारण उनका दृष्टिकोण बदल गया और वह नई जागृति से प्रभावित होकर नई बातों का स्वागत करने पर तैयार हो गए। परंतु जिन लेखों ने उनको उर्दू साहित्य के इतिहास में जगह दिलाई है, वह उनके युवावस्था के लेख हैं, जैसे एक शायर का अंजाम, साहब की सरगुजिश्त, निगारिस्तान और जमालिस्तान। नियाज फतेहपुरी एक बड़े विद्वान और वेग गति के लिखने वाले लेखक थे। वह अरबी फारसी के अच्छे पंडित थे और अंग्रेजी और हिंदी भाषा से भी भली भांति परिचित थे। 1922 ईस्वी में अपनी एक मासिक पत्रिका निगार का प्रकाशन शुरू किया और अपनी जिंदगी भर बड़े उत्साह से निकालते रहे, जिसने उर्दू के बहुत से नए लेखकों को अपनी विचार स्वतंत्रता और बुद्धिवाद से अत्यंत प्रभावित किया। वह धर्म को बुद्धि की कसौटी पर कसते और बड़े तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत करते। इसमें उनका कड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन वह अपने विचारों को प्रकट करने में कभी संकोच नहीं करते थे। नियाज को प्रगतिशील साहित्यकार नहीं कहा जा सकता, परंतु वह अपनी विचार स्वतंत्रता के कारण रूढ़िवादियों से अलग समझे जाते थे। नियाज ने उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, आलोचना, इतिहास सभी प्रकार की रचनाएं की हैं। उनकी कहानियाँ अधिकतर रंगीन, रोमानी और मनोरंजक होती थीं, जिनमें सामाजिक पृष्ठभूमि पर रखकर वह केवल मनोभावों का विश्लेषण करते थे। बाद में वह अधिकतर आलोचनात्मक निबंध लिखते थे, जिनमें सौंदर्यवाद की दृष्टि से वह बड़े भावुक और प्रभावपूर्ण ढंग से साहित्य की विशेषताएं प्रस्तुत करते थे। नियाज की भाषा आरंभ में फारसी अरबी शब्दों और वाक्यों से बहुत बोझिल हुआ करती थी। उसमें बड़ा जोश और जोर होता था, लेकिन बाद के लेखों में एक प्रकार की सरलता पैदा हो गई थी, तथापि उसकी रंगीनी में अधिक कमी नहीं हुई थी। उन्होंने हिंदी और विशेषकर ब्रज भाषा के अच्छे अच्छे दोहों को टीका सहित जज्बाते भाषा के नाम से प्रकाशित किया था। हाली आज़ाद और सर सैयद के बाद से उर्दू में साहित्यिक आलोचना का आम रिवाज हो गया है। आलोचकों में कई श्रेणी के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल गवेषणात्मक ढंग से पुरानी पुस्तकों और लेखों पर टीकाएं लिखते हैं और उनको लंबी लंबी भूमिकाएं लिखकर प्रकाशित करते हैं। कुछ वह हैं जो हाल ही के पथ पर चलकर साहित्य की विशेषताओं और त्रुटियों की खोज लगाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहित्य और कविता में केवल सौंदर्य की खोज करते हैं और सुंदरता का जो प्रभाव स्वीकार करते हैं उसको रचनात्मक ढंग से लिख देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल व्याकरण और शब्दों के ठीक अर्थ इत्यादि से काम रखते हैं। इन सब आलोचकों की संख्या बहुत है और सबका उल्लेख असंभव है, फिर भी कुछ प्रसिद्ध लेखकों के नाम और काम पर दृष्टि रखना वर्तमान काल की साहित्यिक उन्नति के समझने में सहायक होगा। पृष्ठ संख्या 213। इस अध्याय में जिनकी चर्चा की जाएगी उनमें अधिकतर वह साहित्यकार हैं जिनका दृष्टिकोण सामाजिक विश्लेषण पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने ढंग से कवियों की जीवनी, उनके मृत्यु दिवस, उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, उनकी रचनाओं की संख्या और उनके दूसरे साहित्यकारों से संबंध रखने पर जोर देते हैं। यह काम भी किसी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए आवश्यक है, लेकिन स्पष्ट है कि इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक जीवन और साहित्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध को ना देखा जाए, उसकी प्रगति का इतिहास पूर्णतया समझ में नहीं आ सकता। चेतनापूर्वक जिन लेखकों ने यह दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा की, उनका उल्लेख अंतिम अध्याय में होगा। यहाँ केवल उन्हीं की चर्चा की जाएगी जो पुराने और नए के बीच की कड़ी बन गए हैं या अवचेतन में उस परंपरा को दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुए हैं जो हाल ही ने चलाई थी। मौलाना अबुल हक, मौलाना सुलेमान नदवी, मौलाना अब्दुल मजिद दरियावादी, लाला श्री राम, हाफिज महमूद शिरानी, पंडित कैफी, सैयद अहमद दहलवी, मोहम्मद हुसैन अदीब, नसीर हुसैन ख्याल, अंदलीब शादानी, सैयद मसूद हसन रिजवी, अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी डॉक्टर, जोर नसीरुद्दीन हाशमी अब्दुल कादिर सरवरी और डॉक्टर अब्दुल्ला उन आलोचकों में गिने जाते हैं जिन्होंने आधुनिक काल में उर्दू साहित्य को लोकप्रिय और व्यापक बनाने में बड़ा भाग लिया है। इनमें से कई अभी जीवित हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं। उनके संबंध में कुछ अधिक लिखना इस संक्षिप्त इतिहास में संभव नहीं है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इनमें से कुछ के काम बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनकी रचनाएं बड़ी महानता रखती हैं जो हाल ही आज़ाद और शिबली की रखती थी। नए साधनों के पैदा हो जाने के कारण यह लेखक दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास और विज्ञान की सहायता से ज्ञान की सीमाएं विस्तृत करते हैं, परंतु जैसा कि कहा गया है इनमें से अधिकतर वह हैं जो साहित्य की प्रगति को सामाजिक चेतना की दृष्टि से नहीं देखते। मौलाना अब्दुल हक 1869 से 1960 ईस्वी उर्दू के एक बहुत बड़े लेखक और विद्वान समझे जाते हैं। उन्होंने अपनी समस्त आयु उर्दू की प्राचीन रचनाएं खोजने, उन पर टीकाएं लिखने, उन्हें प्रकाशित करने और उर्दू भाषा को शक्तिशाली बनाने में लगा दी। वह हैदराबाद में कई कॉलेजों के अध्यक्ष और प्रिंसिपल रहे और वहीं उन्होंने अपनी अधिकतर पुस्तकें और निबंध लिखे। उनकी रचनाओं में मराठी पर फारसी का असर, नुसरती, मरहूम देहली कालिज सैयद अहमद खां प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त उनके शोधपूर्ण और आलोचनात्मक लेखों के कई संग्रह मुकद्दमाते, अब्दुल हक तनकीदाते, अब्दुल हक चंद हम और सर के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने अपनी खोज से उर्दू के कई प्राचीन लेखकों और कवियों को जीवित किया है और अपने अथक परिश्रम से उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने में बड़ी सहायता की। पृष्ठ संख्या 214। सच यह है कि उनके लेख इतने महत्वपूर्ण नहीं जितना उनका यह काम है कि उन्होंने बहुत से लेखकों को रचनात्मक काम की ओर लगाने का प्रयत्न किया। वह हाल ही के ढंग की सरल गद्य लिखते और भाषा को अनुचित फारसी और अरबी शब्दों से बोझिल नहीं होने देते थे, परंतु 1936 ईस्वी के पश्चात उनकी दृष्टि में संकीर्णता पैदा हो गई थी और ऐसा जान पड़ता है कि उनके अनुचित उत्साह से उर्दू हिंदी झगड़े को बढ़ावा मिला। पाकिस्तान बनने के बाद वह वहीं चले गए और वहाँ अंजुमन तरक्की उर्दू स्थापित करके उसी काम को आगे बढ़ाते रहे जो उन्होंने हिंदुस्तान में आरंभ किया था। लाला श्री राम देहलवी 1875 से 1929 ईस्वी दिल्ली के एक बड़े परिवार से संबंध रखते थे जिसमें उर्दू के अच्छे अच्छे लेखक पैदा हो चुके थे। लाला श्री राम अंग्रेजी, फारसी और अरबी खूब जानते थे, इसलिए जब अपने स्वास्थ्य के बिगड़ जाने के कारण 1907 ईस्वी में उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उर्दू कवियों का एक ऐसा तज़किरा लिखने का प्रयत्न किया जिसमें कोई कवि छूटने न पाए। उसके चार भाग प्रकाशित हो सके थे कि उनका देहांत हो गया। यह तज़किरा खुमखाने जावेद के नाम से प्रसिद्ध है और उर्दू के महत्वपूर्ण किताबों में गिना जाता है। इसमें कहीं कहीं गलती भी हो गई है, परंतु साधारणतः इसमें गहरे अनुसंधान से काम लिया गया है। इस पुस्तक को संग्रहित करने के लिए उन्होंने सहस्त्रों पुस्तकें एकत्र की थीं, जिनमें से कुछ तो संसार में कहीं और नहीं पाई जाती। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रचना और उनका पुस्तकालय सब हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिए गए और उनके काम को पंडित कैफी ने आगे बढ़ाने की चेष्टा की। अतः उनका पांचवा भाग पंडित कैफी ने संकलित कराया है। पंडित कैफी 1866 से 1955 ईस्वी स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञों में गिने जाते थे। उनकी कविताओं के भी कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु वास्तव में वह एक गद्य के लेखक की हैसियत से उर्दू साहित्य के इतिहास में सदैव जीवित रहेंगे। उन्होंने नाटक इत्यादि भी लिखे हैं, परंतु उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कैफिया भाषा संबंधी ज्ञान का एक अनन्य कोष ही है। नवाब नसीर हुसैन ख्याल 1880 से 1934 ईस्वी पटने के एक विख्यात लेखक हुए हैं। उन्होंने भी उर्दू भाषा की उत्पत्ति और उन्नति के संबंध में कई महत्वपूर्ण शोध किए और उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उनमें दास्तान उर्दू और मुगल और उर्दू प्रसिद्ध है। उनके लिखने का ढंग मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मिलता जुलता था। वह शब्दों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से करते थे और जिस शब्द से जिस स्थान पर जो काम लेना चाहते थे बड़े ही रोचक ढंग से ले लेते थे। उनकी शैली में गंभीरता और सरलता एक साथ मिलती है, मगर उनके साहित्यिक विवेचन में बहुत सी त्रुटियां हैं। मौलाना शिबली की स्थापित की हुई संस्था दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में उर्दू के कई लेखकों ने उस कार्य को जारी रखा। मौलाना सुलेमान नदवी, अब्दुल सलाम नदवी, सईद अंसारी, रियासत अली नदवी, शाह मुइनुद्दीन नदवी सब उर्दू के अच्छे लेखक माने जाते हैं। पृष्ठ संख्या 215। इसमें मौलाना सुलेमान नदवी का महत्व सबसे अधिक है। वह शिबली के सच्चे उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। उनकी पुस्तकों में कुछ वह हैं जिनको मौलाना शिबली अधूरा छोड़ गए थे और कुछ वह जो स्वयं उन्हीं के विचारों का परिणाम कही जा सकती हैं। उनकी पुस्तकें भी विशेषकर धार्मिक साहित्य से संबंध रखती हैं। शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से केवल दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं, नकुसो सुलेमानी और खय्याम, यह दोनों रचनाएं उर्दू की सुंदर गद्य शैली में हैं। वह एक बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनके अधिकतर लेख गहरे अनुसंधान का पता देते हैं। यह बात खय्याम के अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अरब और हिंद के ताल्लुकात में भी पाई जाती है। वह भी पाकिस्तान चले गए थे और वहीं उनका देहांत 1953 ईस्वी में हो गया। मौलाना अब्दुस सलाम की पुस्तक सेरुल हिंद उर्दू काव्य का इतिहास समझने में बड़ी मदद देती है। इस संस्था के अन्य लेखकों की रचनाएं अधिकतर धार्मिक हैं, परंतु उनका साहित्यिक महत्व भी है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी वर्तमान युग के प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों में समझे जाते हैं। उनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। जिस समय वह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन पर नास्तिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण से इस्लाम और अन्य धर्मों पर चोटें की। उसी समय उन्होंने यूरोपियन दर्शन शास्त्र से संबंध रखने वाली कई पुस्तकों का अनुवाद किया और अंग्रेजी उर्दू में बहुत से लेख लिखे। इसके पश्चात उन्होंने पलटा खाया और धीरे धीरे फिर धार्मिक विचारों का प्रचार करने लगे, और अब उनकी संकीर्णता इतनी बढ़ गई है कि वह संसार की हर घटना को विशेष प्रकार की इस्लामी दृष्टि से देखते हैं। यह दृष्टिकोण भी केवल उनका ही होता है। उन्होंने कुछ साहित्यिक निबंध भी लिखे हैं जो शैली की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनके संग्रह अकबरनामा, मुलाकाते माजिद और मजामीने माजिद के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त उनकी रचनाओं और अनुवादों में फलसफ़े जज्बात, फलसफ़े इज्तिमा, तशव्वुफ और इस्लाम, तारीख़े इखलाक़े यूरोप और मुहम्मद अली की डायरी प्रसिद्ध हैं। वह चेतनापूर्वक हर प्रगतिशील विचार का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं, किंतु उनके लिखने का ढंग ऐसा सुंदर और मनोरंजक है कि उनके रूढ़िवादी विचार भी पढ़ने में मजा देते हैं। नए उर्दू साहित्य के निर्माताओं में वहीदुद्दीन सलीम पानीपति भी बड़ा महत्व रखते हैं। पद्य और गद्य दोनों में उनके कार्य सराहनीय हैं। वह कई भाषाओं के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने भाषा विज्ञान और विशेषकर परिभाषिक शब्दों के अनुवाद और रचना के संबंध में जो कुछ किया है वह उल्लेखनीय है। उनका समस्त जीवन ज्ञान प्राप्ति के संघर्ष में लगे हुए विद्यार्थियों का जीवन था, जिसे वह बड़ी सादगी से बिताते थे। उनकी आयु का बड़ा भाग हैदराबाद में बीता। यहाँ उन्होंने नए साहित्यकारों को बहुत प्रभावित किया। उनके पद्य संग्रह के अतिरिक्त दो गद्य की रचनाएं भी मिलती हैं, इफादाते सलीम और वजह इश्तेलाहात, और दोनों उनके ज्ञान का परिचय देती हैं। उनकी पहली रचना लेखों का संग्रह है, किंतु हर निबंध अपने स्थान पर विशेष महत्व रखता है, और दूसरी पुस्तक परिभाषिक शब्दों की बनावट से संबंध रखती है, जिस पर इस समय तक कोई वृद्धि नहीं हो सकी है। 1916 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी, अजमतुल्लाह खां और सज्जाद अंसारी तीन ऐसे नाम हैं जो भली भांति ख्याति प्राप्त करने के पहले ही मिट गए। तीनों थोड़ी थोड़ी आयु में परलोकवासी हुए। यह सब कवि भी थे और लेखक भी। अजमतुल्लाह खां ने हिंदी काव्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था और उर्दू कविता को नए साँचे में ढालने की चेष्टा की थी, जो उर्दू काव्य शास्त्र के इतिहास में सदैव आदर का पात्र बनी रहेगी। उनकी कविताओं का संग्रह सुरीले बोल नागरी लिपि में भी प्रकाशित हो चुका है। गद्य में भी उनके लेखों के दो संग्रह छपे हैं, जिनके अध्ययन से अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि उन्हें लिखने का कुछ और समय मिलता तो वह कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं छोड़ जाते। इसी प्रकार डॉक्टर बिजनौरी की भी केवल दो रचनाएं मिलती हैं, एक निबंधों का संग्रह वाकियाते बिजनौरी और दूसरा मिर्जा गालिब की काव्य रचना पर एक दार्शनिक लेख जो महासिने कलावे गालिब के नाम से प्रकाशित हुआ। वह यूरोप की कई भाषाएं जानते थे और दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनका यह लेख दार्शनिक विचारों से भरा हुआ है। सज्जाद अंसारी के कुछ निबंध और कविताएं एकत्र करके उनकी मृत्यु के पश्चात महाशरीर ख्याल के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं, जिनके अध्ययन से उनकी बुद्धि की तीव्रता, कलात्मक शक्ति और विचार स्वतंत्रता का पता मिलता है। उनके लेखों में बड़ी जान थी और वह बड़ी स्वतंत्रता से दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर अपने विचार प्रकट करते थे। इन तीनों लेखकों में यह समानता अवश्य मिलती है कि वह सबके सब सौंदर्य के उपासक और नवीनता की ओर आकृष्ट थे। अनुसंधान प्रधान साहित्य के विशेषज्ञों में हाफिज महमूद शिरानी का नाम बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। उन्होंने उर्दू भाषा की उत्पत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण पुस्तक पंजाब और उर्दू नामक लिखी है, जिसमें प्रारंभिक पंजाबी और प्रारंभिक उर्दू की समानता दिखाई है। पृथ्वीराज रासो पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो प्रकाशित हो चुकी है। उनको पुराने और समकालीन लेखकों के यहाँ गलती निकालने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था और वह सहस्त्रों पुस्तकों को खंगाल कर उनमें से ऐसी बातें ढूंढ निकालते थे कि उनकी बात ना मानना कठिन हो जाता था। उन्होंने मौलाना आज़ाद और मौलाना शिबली की रचनाओं में अनुसंधान कर बहुत सी गलतियाँ निकालीं, जिनमें से कुछ पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। वह अरबी, फारसी और हिंदी के बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी गद्य शैली बड़ी रूखी फीकी और निस्सार होती थी। उस ढंग का काम करने वालों में इस समय भी कई आलोचक के नाम लिए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 217, जैसे डॉक्टर अब्दुल तार सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल्लाह, गाजी अब्दुल वदूद और इम्तियाज अली अरशी, किंतु यहाँ उनके संबंध में कुछ विस्तार पूर्वक लिखना अनुचित है। पंडित मनोहर लाल जुतशी, मिर्जा मुहम्मद अस्करी, मौलवी महेश प्रसाद और नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू साहित्य निर्माण में बड़े काम किए हैं और बहुत सी ऐसी प्राचीन रचनाएं खोज निकाली हैं जिनसे उर्दू साहित्य के इतिहास एवं ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। परंतु इस स्थान पर उनकी रचनाओं पर भी कुछ विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। जब कोई उर्दू साहित्य के वर्तमान युग का इतिहास विस्तार में देखना चाहेगा, तो इन लेखकों के संबंध में उसे जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। भारतीय विश्वविद्यालयों में जब से उर्दू को उच्च शिक्षा का विषय मानकर जगह दी गई है, उस समय से वहाँ के अध्यापक बड़ा काम कर रहे हैं। उनमें जो नवीन सामाजिक चेतना से अधिक प्रभावित हुए हैं, उनका उल्लेख आगे के अध्याय में होगा। यहाँ कुछ ऐसे लेखकों की चर्चा की जाती है जो प्राचीन साहित्यकारों के ढंग पर साहित्यिक निर्माण में विश्वास रखते हैं और किसी न किसी रूप में नवीन साहित्य के प्रयोगों की ओर शंका की दृष्टि से देखते हैं। इनमें मसूद हसन रिजवी, अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी, सैयद यामिन अली, डॉक्टर हफीज सैयद, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादिर जोर, प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी, डॉक्टर अंदलीप शादानी और डॉक्टर अब्दुल्लाह के नाम स्मरणीय हैं। मसूद हसन रिजवी 1954 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में उर्दू फारसी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अधिकतर प्राचीन कवियों और लेखकों का विशेष अनुसंधान किया है, परंतु वह नए साहित्य से भी भली भांति परिचित हैं। उन्होंने मर्सिये का अनुसंधान विशेष रूप से किया है। उनकी प्रमुखता प्रकाशित रचनाओं में हमारी शायरी, रूहे अनीस, दीवाने फाइज, फैजे मीर, मजलिसे रंगी, मुत्फर की रातें, गालिब, उर्दू ड्रामा और स्टेज, ईरान का मुकद्दस ड्रामा प्रसिद्ध हैं। इनके लेख शोध समस्याओं से ओतप्रोत होते हैं, परंतु वह नए प्रकार की आलोचनाएं भी लिखते हैं। उनकी लोकप्रिय पुस्तक हमारी शायरी उर्दू काव्य की विशेषताओं के समझने में बड़ी सहायक होती है। उनकी भाषा सरलता और गंभीरता दोनों से परिपूर्ण है। इस समय वह वाजिद अली शाह के साहित्यिक महत्व और उर्दू मर्सिये पर काम कर रहे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे। वह विशेषकर हास्यपूर्ण निबंध लिखते हैं, कभी कभी आलोचनात्मक लेख भी लिखते हैं, पर कहीं कहीं उनमें भी हंसी के छींटे उड़ाते हैं। उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे मजामीन रशीद, खंदा, गंज हाय, गिरा माया, तंजिया तो मुझका, आंसू फता बयानी मेरी, जदीद गजल और शेख, पृष्ठ संख्या 218, नियाजी। उर्दू के हास्य रस की परंपरा पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो उर्दू में अपने ढंग की पहली रचना कही जा सकती है। सिद्दीकी के व्यंग और गहरे संकेत उनकी कलात्मक शैली को गंभीर और दार्शनिक बनाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वह वर्तमान युग के विशिष्ट हास्य लेखक हैं। वह केवल हंसने के लिए नहीं लिखते, बल्कि शिक्षा और आत्मसंयम के लिए लिखते हैं। सैयद जामिन अली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर थे। वह कवि भी हैं और लेखक भी। कविता में वह प्राचीन काव्य शैली का अनुसरण करते थे, परंतु नवीन प्रयोगों की कुछ विशेषताओं को भी सराहती थी। उन्होंने भी अपना अधिक समय प्राचीन साहित्य, विशेषकर मर्सिये के अनुसंधान में लगाया है। उनके कुछ ही लेख प्रकाशित हुए हैं, जैसे वाकियाते करबला और उर्दू जवान और अदब। डॉक्टर हफीज सैयद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक थे। उन्होंने काजी महमूद वाहरी का विशेष अनुसंधान करके उनका काव्य संग्रह संकलित किया, जो प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध और अशोक पर उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक विषयों पर बहुत से लेख लिखे हैं, किंतु अपना प्रभाव साहित्य पर नहीं छोड़ा है, जिससे उन्हें स्मरण रखा जा सके। उनकी गद्य शैली सीधी सादी और नीरस होती है। 1961 ईस्वी में देहांत हुआ। डॉक्टर मुहियद्दीन कादिर जोर हैदराबाद दक्कन के विशिष्ट लेखकों में थे। उन्होंने यूरोप में रहकर भाषा विज्ञान पर बहुत काम किया और उसी समय उर्दू अंग्रेजी में अपने अनुसंधानपूर्ण निष्कर्ष प्रकाशित कराए। वहीं उन्होंने उर्दू के उन प्राचीन लेखकों और कवियों का अध्ययन भी किया जिनकी रचनाएं वहाँ के पुस्तकालयों में मिलती हैं। उनकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे रूहे तनकीद, तनकीदी मकालात, हयाते कुली कुतुब शाह, दास्ताने अदबी हैदराबाद इत्यादि। इनके अतिरिक्त उन्होंने बहुत से कवियों के संग्रह अपनी टीकाओं सहित प्रकाशित किए हैं। वह दक्कनी भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ थे और उन्होंने हैदराबाद में उर्दू साहित्य का अनुसंधान करने वाला एक पूरा जत्था बना लिया था, जो अब भी गवेषणात्मक कार्यों में लगा हुआ है और प्राचीन उर्दू साहित्य की खोज कर रहा है। डॉक्टर जोर की गद्य शैली भी सीधी सादी और नीरस होती है। उनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। अब्दुल कादिर सरवरी उस्मानिया विश्वविद्यालय में उर्दू के अध्यक्ष थे। वहाँ से अवकाश प्राप्त करके जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू फारसी विभाग के अध्यक्ष हो गए। कई पुस्तकें प्रकाशित करा चुके हैं, जैसे जदीद उर्दू शायरी, दुनियाए अफसाना, उर्दू मसनवी का इर्तिका, उर्दू की अदबी तारीख, जवानो इल्मे जवान। इनके अतिरिक्त उन्होंने कुछ कथाओं के अनुवाद भी विभिन्न भाषाओं से किए हैं। पृष्ठ संख्या 219 और कई कवियों के संग्रह की टीकाएं लिखी हैं। समकालीन दक्षिणी आलोचकों में उनका विशेष स्थान है। डॉक्टर अंदलिब शादानी ढाका विश्वविद्यालय में उर्दू फारसी के प्रोफेसर हैं। उनके अनुसंधान का विषय वैसे तो फारसी है, परंतु उन्होंने उर्दू में भी बहुत लिखा है। वह कवि भी हैं और आलोचक भी। कहानियों के संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित कराए हैं। उन्होंने अधिकतर अपनी आलोचनाओं में उर्दू कविता की त्रुटियों की ओर संकेत किया है। उनके निबंधों के कई संग्रह तहकीकात की रोशनी में और दौरे हाजिर की उर्दू गजल गोई के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान में उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने भी विशेषकर फारसी भाषा का अनुसंधान किया है, परंतु उर्दू में भी बहुत कुछ लिख चुके हैं। उर्दू गद्य पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक लिखी है और बहुत से उर्दू निबंधों में उसी पुस्तक के विचारों को विस्तृत रूप में प्रकट किया है। फारसी के हिंदी लेखकों और कवियों पर भी उनकी एक गवेषणापूर्ण रचना प्रकाशित हो चुकी है जिससे उनके ज्ञान का पता चलता है। डॉक्टर अब्दुल्लाह ने अनुसंधान तथा शोध कार्यों से शुरू करके नए युग के लेखकों की तरह आधुनिक दृष्टि से ओतप्रोत आलोचनाएं भी लिखी हैं जो उनके अध्ययन और जागरूक होने का पता देती हैं। उनकी अनेक रचनाओं में भाषो नजर, मुबाहिस, वली से इकबाल तक, सर सैयद और उनके रफका के कारनामे, उर्दू तज़किरे आदि उल्लेखनीय हैं। बहुत से नाम छोड़ दिए गए हैं और जिनका उल्लेख हुआ है वह भी बिल्कुल अधूरा है। फिर भी इससे अधिक संभव न था। जो कुछ लिखा गया है उसके अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से उर्दू गद्य और पद्य दोनों में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। यह प्रभाव विचारधारा पर भी पड़ा था और शैली पर भी। सर सैयद के समय से लेकर इस समय तक उन सभी विषयों पर काम हुआ है जो किसी भाषा को व्यापक और विस्तृत बनाते हैं। इससे यह भी प्रतीत होगा कि अंग्रेजी के प्रभाव को स्वीकार करने और उसका बहिष्कार करने की लहरें साथ साथ चल रही थी। फिर भी उर्दू साहित्य उस नए युग का संदेश दूत बन गया जो ऐतिहासिक कारणों से सारे संसार पर छाया हुआ था। भारत की सामाजिक और राजनीतिक चेतना के अनुपात से उर्दू साहित्य में भी नवीन विषयों को ग्रहण करने की शक्ति पैदा होती थी। जिस प्रकार उर्दू साहित्य ने यहाँ के समस्त जीवन को अपने घेरे में ले लिया, उसका उल्लेख आगामी पृष्ठों में होगा।